नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000, 1811-7001। मेरे सामने स्टूडियो में मौजूद है, मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, स्वयंसेवी संस्था अनहद की सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी, तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही जाकिया सोमन, इन दिनों चर्चा में है, हम सब जानते हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर। जाकिया को मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके का विरोध सामना करना पड़ रहा है, अहमदाबाद से वो इस कार्यक्रम में शामिल है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि इसका विरोध कर रहा है, इसका पक्ष रखने के लिए हैदराबाद से डॉक्टर आसमा जहरा यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा अहमदाबाद, जहाँ से जाकिया सुमन है, और इस मामले में वो पार्टी भी हैं, आपने तीन तलाक के मुद्दे पर अदालत में एक पिटिशन दायर की और उस पर अभी चर्चा चल रही है, फैसला आना है। ये बताइए कि इतना सख्त विरोध क्यों, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि भाई जो है तीन तलाक का मुद्दा सही नहीं है।
सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि जेंडर जस्टिस इस्लाम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और हमारी जो रीडिंग है कुरान की और हमारी जो इंटरप्रिटेशन है और हमारी जो समझ है उसके मुताबिक मर्द और औरत दोनों बिल्कुल बराबर है। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत में फर्क नहीं किया है। और जहां तक तीन तलाक की बात है तो तीन तलाक का कुरान में कोई जिक्र नहीं है। कुरान में तलाक को एक बहुत गलत चीज कहा गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कुरान के मुताबिक तलाक जब भी होगा वो जस्ट एंड फेयर होगा, यानी कि न्यायिक तलाक होगा। और साथ ही साथ कुरान में जोर दिया गया है, आयतें हैं इस बात की जहाँ कहा गया है कि अगर पति और पत्नी के बीच में कोई भी क्लेश हो, कोई भी मन दुख हो, तो सबसे पहले कोशिश हो उसको बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए उसको सॉल्व करने की, और ये कोशिश लगातार चलती रहनी चाहिए कम से कम 90 दिनों तक। और ये कोशिश में अगर आपस में कामयाबी नहीं मिलती है तो आयत है कुरान में जहाँ कहा गया है कि दोनों पक्षों के ओर से एक एक मध्यस्थ को चुना जाए जो पति पत्नी में सुलह कराने की या उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश करे, और जब ये पूरी प्रक्रिया जब नाकाम हो जाए तब जाके तलाक हो सकता है, लेकिन वो तलाक न्यायिक होगा।
जी,
अब आप मुझे
मैं यहाँ पर आपके इसी तर्क पर मैं शामिल कर रहा हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि इसका विरोध कर रहा है, हैदराबाद से डॉक्टर आसमा जहरा यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हैं। क्यों विरोध हो रहा है, जबकि अगर एक प्रगतिशील समाज की बात की जाए, मर्द और औरत की बराबरी की बात की जाए, तो फिर ये धार्मिक, जिसको कहते हैं कि आज़ादी के नाम पर उसका हवाला देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तलाक का विरोध क्यों कर रहा है? भाई उनको भी तो बराबरी का हक होना चाहिए।
जी, इस्लाम वो मज़हब है जो सबसे पहले औरत को एक इंडिविजुअल की हैसियत से रिकग्नाइज किया। 1400 साल पहले से मुस्लिम खवातीन को अधिकार मिले हैं, प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं, और इस्लाम के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस कुरान और हदीस की बुनियाद पे है, बेस है उसका। ये किसी के इंसानों के बनाए हुए नहीं है कि हम अपने से इसमें कोई चीज़ बदल दें, ऐड कर दें या डिलीट कर दें। अब कुरानिक लॉज और जो टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट जो हमारे हैं उसको समझने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है वो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हमको ये देखना होगा कि ये बात कुरान में लिखी हुई है, ये बात हदीस से है, तो इसकी प्रैक्टिस उस टाइम पे क्या थी, व्हाट वाज इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस में रहेगा वो हमारे लिए बेस बनेगा। तो कुरान और हदीस और व्हाट वाज इन प्रैक्टिस उस दौर में, उस बेसिस पे ये हमारा पूरा शरिया लॉ चलता है।
1400 साल तो बहुत पुराना समय हो गया, इस दौरान कितना पानी। जी
नहीं, अब ये जो स्क्रिप्चरल लॉज हैं इनके रूट्स रिलीजन में हैं, कि हमारी अपनी आस्था है, हमारी अपनी बिलीफ है। अब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद मुल्क है।
नहीं, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में सती प्रथा हमारा बिलीफ था, सती प्रथा जैसी तमाम कुरीतियां थी हिंदू धर्म में, उस पर प्रोहिबिशन एक्ट आया, उसको बंद किया गया। शबनम जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे?
जी, मैं यहाँ आपको बताऊं। हेलो,
जी 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 शबनम जी से मैं राय ले रहा हूँ।
देखिए एक तो ये है कि जैसे ज़किया ने
अगर गलती है तो कभी सुधरेगी नहीं।
नहीं नहीं, एक तो ये कि जो गलती है वो सुधरनी चाहिए, लेकिन जैसे ज़किया ने कहा कि जो अभी जो हालात हैं कि एक बार में आपने तीन बार तलाक कहा या आपने मैसेज ही कर दिया और तीन तलाक 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 हो गया, वो इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है अगर हम इस्लाम की बात भी कर रहे हैं। तो परेशानी ये है कि जो इस्लामिक लॉज हैं जिसको आप पर्सनल लॉज कहते हैं उनका कोडिफिकेशन इंडिया में हुआ ही नहीं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया कि वो जो कह रहे हैं वही आखिरी वक्त आखिरी शब्द है और वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जिस तरह से आर्बिट्रेशन हो के तीन महीने के अंदर जो एक तरीका है कुरान के अंदर तलाक होने का, वो बिल्कुल अलग तरीका है और जो प्रैक्टिस में है वो बिल्कुल अलग तरीका है। एक तो ये अपनी बात है, दूसरी बात ये कि हम एक
ज़किया भी यही बात कह रही
जी ज़किया भी यही कह रही है हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे और कानून मौजूद हैं और अगर कोई औरत ये चाहती है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में या किसी और एक्ट में जाके अपना हक के लिए लड़ सके तो वो प्रोविजंस मौजूद हैं, उसके वो भी ओपनिंग्स हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे पर्सनल लॉ में नहीं जाना तो नोबडी कैन फोर्स मी टू डू इट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो गलत चीज़ें हैं उनके ऊपर हम आवाज़ ना उठाएं। इस तरह की ट्रिपल तलाक जो है वो एबॉलिश होनी चाहिए। ज़किया प्रोग्राम पे हैं, उन्होंने सर्वे किया है बहुत बड़ा, हाँ। और 90% औरतों ने ये बात कही है, मुसलमान औरतों ने, कि हम ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ हैं।
मैं ज़किया के पास आऊँगा, यहाँ पर कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ मैं जी। नाम बताएं और तीन मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, क्या कहना चाहते हैं नाम बताएं पहले। हेलो
जी, मेरा नाम शाहरुख है।
जी शाहरुख, कहाँ से बोल रहे हैं शाहरुख?
जी सर, मैं दुमका से बोल रहा हूँ, दुमका झारखंड से।
जी
जी सर, ये सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये तीन तलाक की जो बातें हैं ये तो पूरी तरह से एकदम बेबुनियाद है। ये किसी को तीन तलाक बोल देने से किसी का ये जो तलाक हो नहीं जाती है सर, ये तो ये सारी बातें एकदम मुस्लिम समाज के लिए एकदम बेहुदा सी चीज है। ये इसमें सारी दिक्कतें औरतों को झेलना पड़ता है इसके कारण।
जी
जी सर,
जी,
तो ये एकदम
गलत बुनियाद है। इस सवाल का जवाब हम लेंगे, हमारी जो हैदराबाद में मौजूद हैं, इस सवाल का जवाब लेंगे। यहाँ पर मैं वापस चल रहा हूँ ज़किया के पास, उनके पास समय कम है और उन्हें कहीं जाना भी है। आपने एक सर्वे करवाया था और इसका जिक्र शबनम आप भी कर रही थी, उस सर्वे में क्या चीज़ें सामने आई?
वो सर्वे का मकसद ये था कि एक
दस राज्यों में, पहले थोड़ा सा उस सर्वे के बारे में बता दें, दस राज्यों में आपने सर्वे करवाया था?
दस राज्यों में सर्वे किया था और सैंपल साइज था 4710 और उसका मकसद था कि मुस्लिम महिलाओं के पर्सनल लॉ के स्टेटस को जानना और साथ ही साथ उनकी राय मांगना कि उनकी राय में क्या ऐसे आगे चल के ऐसे सुधार होते हैं जिसके वजह से उनकी जो जो ना पड़ रहा है उसका कुछ सोल्यूशन निकल सके। सीकिंग जस्टिस विद फैमिली नाम था,
तो उसमें अधिकांश लोगों ने इसका समर्थन किया था कि भाई तीन तलाक जो है उसको नहीं होना चाहिए। मैं वापस चल रहा हूँ हैदराबाद। जी आपने शाहरुख की आवाज़ सुनी, शाहरुख हमारे एक श्रोता थे जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। शाहरुख कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार है और ऐसा होना नहीं चाहिए, अब क्या तर्क है? आपने शबनम को भी सुना।
जी मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि तलाक एक सेपरेशन है और वो उस वक्त आता है जब आदमी अपनी बीवी को अपनी बीवी की हैसियत से रखना नहीं चाहता। इस्लाम में मुसलमान औरत का बहुत बुलंद मुकाम है, उसको इज्जत है, डिग्निटी है। इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसका शौहर उसको बीवी की हैसियत से रखना नहीं चाहता और उसको तलाक देके अपनी मैरिटल रिलेशनशिप से डिसोन कर रहा है तो इस्लाम कहता है कि आपको दूसरे रिश्ते मिलेंगे, आप तीन महीने इज्जत के बाद आप फ्री हो गई। इस्लाम के कवानीन ऐसे नहीं हैं कि आप कहें कि यू हैव नो राइट टू डिवोर्स मी, आप मुझे तलाक ना दें, मैं तुम पर मसलत रहूंगी, क्योंकि हर रिलीजन के आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट अलग हैं। ज़किया जी इस्लाम के बारे में बहुत कम जानती हैं, शी डजंट नो कि आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम इज नॉट जन्म जन्म का बंधन या पति परमेश्वर। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेपरेशन तलाक से भी हो सकती है, खुला से भी। और एक दूसरी बात कि अगर तलाक हो तो इसमें सफर सिर्फ औरत नहीं होती है, आदमी भी सफर होता है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि कंसर्न फॉर वुमेन, तो मैं सोसाइटी में 20 साल से काम कर रही हूँ, मेरे पास हेल्पलाइन है। बाज़ औक़ात तो तलाक लेना मुश्किल हो जाता है कि आदमी कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर हम लोगों को उस औरत को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से छुड़ाना पड़ता है, क्योंकि आदमी जब औरत को इल्ट्रीट कर रहा है, जैसा कि सायरा बानू के साथ इतने अबॉर्शन हुए, तो वो बेचारी को तो तलाक एक उसके लिए राहत थी और सेपरेशन उसके लिए एक तरह से ब्लेसिंग थी, और उसने अपने जो तलाकनामा है उसमें जो वर्ड यूज किए हैं, आई फ्री यू, मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, यू आर फ्री टू यूज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर विल, तो उसने उसको अपनी जिंदगी
नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन 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 मान लीजिए आपके आप किसी पति पत्नी में कोई भेद हुआ, मान लीजिए कि पति पत्नी में कोई भेद हुआ, आप नाराज हुए, आपने तीन तलाक कह दिया और हो गया काम। आखिरी टिप्पणी मैं ले रहा हूँ क्योंकि जकिया जी को जाना है। जकिया जी, शबनम जी को आपने सुना और अभी आप आसमा जी को सुन रही, कोई जवाब देना चाहेंगी आप?
ये इनका जो एटीट्यूड है ना, जो इसमें दिखाई दे रहा है, उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि जकिया को इस्लाम मालूम नहीं है। इसी हेजेमनी के चलते ये हालात जो आज बने हैं हमारे देश में, इन्होंने मान लिया है कि इनको ही सिर्फ जानकारी है और किसी को जानकारी नहीं है, ये जो समझते हैं वही इस्लाम है, बाकी कोई इस्लाम नहीं जानता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में भी इनका यकीन नहीं है, कोर्ट में भी इनका यकीन नहीं है, औरतें अपनी जो कहानी बता रही हैं उसमें भी उनका यकीन नहीं है, कॉलर आपको जो आपके श्रोता है वो कॉलर फोन करके वो कुछ बात बोल रहे हैं उसमें भी इनका यकीन नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को एक मतलब क्या बोलते हैं सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन बना के बैठे हैं, जैसे कि शबनम ने कहा, और इनके चलते ही मुस्लिम कम्युनिटी की और मुस्लिम औरतों की बहुत बड़ी बदखिदमती हुई है और इस्लाम के मजहब को बहुत एक धब्बा लगा है, ऐसे ऐसे ख्यालात की वजह से और ऐसे लोगों के अमाल की वजह से
जी,
और उसी में हम तब्दीली जाते हैं शर्मा जी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय भी हमने सुन ली। शबनम जी, आपसे इनकी राय पर टिप्पणी भी लूंगा और हैदराबाद भी चलूंगा। कार्यक्रम में एक श्रोता को और शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं।
मोहन मुरारी मिश्रा बोल
रहा हूं। मोहन मुरारी जी,
मधुबनी बिहार से।
मधुबनी बिहार से जी, कहें
जी। मेरा विषय है जो इस
जी, लगता है संपर्क टूट गया। ये जाते जाते एक टिप्पणी की कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है खुद ही ठेकेदार बन गए। शबनम जी, फिर हम सीधे उनके पास चलेंगे।
देखिए ऐसा ही है,
स्वयं
क्योंकि मुसलमान जो कौम है हिंदुस्तान में या कहीं भी, वो बहुत डाइवर्स है, बहुत हेट्रोजेनस है और उसमें बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ हैं। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि इस्लाम के अंदर, मैं इस्लाम की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम में खुदा और बंदे के बीच में कोई बीच वाला की कोई जगह नहीं है, जिसे कहते हैं कि जो इंटरमीडिएटरी है उसकी कोई जगह नहीं,
मध्यस्थ
की कोई जगह नहीं है। मैं जो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ उसका जवाब मुझे देना है खुदा को, अगर मैं खुदा में अल्लाह में यकीन रखती हूँ।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों ठेकेदार बन रहा है, सीधे इन्हीं से पूछ लेते
जी
हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोच लिया है कि ये हिंदुस्तान के लाखों लाखों मुसलमान जो अलग अलग तरह से सोचते हैं, जिनका विचार का तरीका अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, ज़बानें अलग हैं, उन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट उस इस्लाम को करते हैं जो शायद आज की 21वीं सदी में कहीं फिट होता दिखाई नहीं दे।
आसमा जी,
जी मैं आपको रिस्पोंड करूंगी इन बातों का। सबसे पहली चीज तो वो जो शरीयत है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके जो उसूल और कायदे हैं, आपने देखा कि पूरा इत्तेहाद हमारे मुसलमानों में है, इसमें कहीं भी हमारे दरमियान फ्रैक्चर्ड ओपिनियन नहीं है। क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखी, पूरे बरेलवी, दियोबंदी, हनफी, सलफी, पूरे सेक्स मुस्लिम पर्सनल,
तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सर्वे हुआ, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सब लोग कौन है? वो मुसलमान नहीं है क्या?
सर्वे, ये जो सर्वे
नहीं, आप सिर्फ रिलीजियस ठेकेदारों की बात कर रहे हैं।
नहीं, रिलीजियस ठेकेदार
नहीं, आप सिर्फ रिलीजियस ठेकेदारों की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे ये लोग जो सर्वे बताए हैं उसके पेपर्स मेरे सामने हैं और इन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया कि इसको तलाक हो गई, उसको तलाक हो गई, जितने केसेस लिखे हैं उसमें उन्होंने खुद लिखा है, अपनी राइटिंग से टाइप किया हुआ है के डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हैरेसमेंट लेड टू डिवोर्स, डाउरी हैरेसमेंट एंड सस्पिशियस नेचर ऑफ द हस्बैंड लेड टू डिवोर्स। तो आप देखिए, अगर हम मेडिकल साइंस में, आई एम अ डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू कि आप डिजीज जो है उसको क्योर करते हैं या नहीं। आपको बीमारी पहचानना होगा कि आदमी औरत पे जुल्म क्यों कर रहा है। अच्छा, वो डिवोर्स नहीं देगा भाई, उसको कह देंगे कि तू तलाक ना दे, तो क्या उस औरत की जो परेशानी है वो कम होगी? क्या इससे हमारी बहनों की जो कंसर्न हुकूमत दिखा रही है, जकिया दिखा रही है?
यहाँ पे सवाल,
उसको तलाक नहीं दिया, मान लेते हैं आपकी बात, यहाँ पे शबनम जी आपकी भी बात मैं मान लेती हूँ, तो क्या शोहर ने तलाक नहीं दिया अबैंडन करके, डिजर्टेड करके? अगर हिंदू वुमेन की तरह, कितने डिजर्शन के केसेस हैं हिंदू वुमेन के, तो वो तलाक नहीं देगा, वो बोलेगा ना मैं एसएमएस से बोलूंगा ना व्हाट्सएप से बोलूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं तलाक।
जी आसमा जी, आसमा जी, शबनम जी बहुत देर से कुछ अपना तर्क रखना चाहती हैं।
आसमा जी, ये बिल्कुल एक खेल जैसा बन गया है कि आप औरत को जब चाहें आप शादी करें और जब चाहें आप 3 बार तलाक कह के और उसको घर से निकाल दें, और उसके बाद ना कोई कंपनसेशन, ना उसकी कोई ज़िंदगी, फ्यूचर ज़िंदगी। ये जो तरीका है, हम जो कुरान में जो एक तो प्रॉब्लम ये है कि बग़ैर कोडिफिकेशन के आप ये लगातार क्लेम कर रही हैं कि ये पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ बिल्कुल अलग है। जो 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 जिस तरह देखिए, जो कुरान में जो तरीका लिखा हुआ है जिसमें तलाक में कम से कम 3 महीने लगते हैं, वो इद्दत के बाद तलाक पूरी होती है।
आसमा जी, शबनम जी की बात पूरी हो लेने देते हैं, फिर
आप तो इद्दत से पहले ही तलाक करके अलग कर देती हैं। इस तरह की तलाक हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।
जी जी,
आप कंसर्न है ना विमेंस राइट्स के लिए, आप कंसर्न है, आप अपना कंसर्न शो करेंगे। मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट है, इसके तहत अगर औरत को सेपरेशन भी होता है तो उसको एक फेयर एंड रीजनेबल कंपनसेशन भी मिलता है। तो आप जब कोडिफिकेशन की बात कहती हैं तो ये है। दूसरी चीज ये कि हमारे मुस्लिम समाज में तलाक का फीसद सबसे कम है, ऐसा जो बताया जा रहा है वैसा नहीं है। द रियल इश्यू ऑफ द इंडियन सोसाइटी टुडे इज डोमेस्टिक वायलेंस। 41% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस से मुतासिर हैं। चाइल्ड मैरिज इतना ज्यादा है, 12 मिलियन बच्चियों की 18 साल की उम्र से पहले शादी होती है।
आसमा जी, हम आंकड़ों में नहीं जाते, क्या होता है जी, मैं यहाँ जनता की आवाज कार्यक्रम में शामिल कर लेता हूँ, उनकी आवाज सुन लेता हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, नाम बताएं।
हेलो
जी, हाँ नाम बताओ।
हेलो,
हाँ नाम बताएं।
मेरा नाम हुआ अख्तर हुसैन राजा।
अख्तर हुसैन राजा साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं बिहार के सीतामढ़ी से, मैं
बिहार के सीतामढ़ी से। जी
जी, और तलाक के संबंध में मुझे कहना है कि 3 तलाक यानी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक देते हैं। उनके धर्म के अनुसार इसकी मान्यता भी दी जाती है, और इस प्रकार तलाक शुदा औरतें दुख एवं दर्द भरी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाती है। अतः मुस्लिम समाज के पुरुषों को अपनी खुशी का परित्याग कर उस तलाक शुदा स्त्री के संबंध में सोचना चाहिए कि तलाक देने के बाद उसकी जिंदगी किस प्रकार व्यतीत होगी। ऐसे मुस्लिम पुरुष स्त्री से भरी जवानी का लुत्फ लेकर 3 बार तलाक कर उसे दूध की मक्खी के तरह निकाल कर दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं, और अपने छोटे बच्चों की परवरिश के लिए फिर उन्हें गलत ढंग से जीने के लिए विवश करता है। जो कल तक अपने पति के साथ सुख और शांति से अपने बच्चों सहित जीवन व्यतीत कर रही होती, 3 तलाक उन्हें नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। अशु 3 तलाक की प्रथा हर कीमत पर समाप्त होनी चाहिए।
नाम आपने क्या बताया था?
मेरा नाम अख्तर हुसैन राजा।
अख्तर हुसैन साहब जी मैं सीधे आसमा जी के पास चल रहा हूँ। आसमा जी देखिए, ये तो जनता की आवाज है। अख्तर साहब जो है वो मधुबनी बिहार
का हिस्सा जी, मैंने सुना है।
जी जी,
ये जिस तरह अब
क्या कहेंगी आप,
हाँ। समाज में होता नहीं मुस्लिम,
ये तो समाज के हिस्से हैं, ये तो समाज की ही आवाज है ना।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि समाज में जो है अगर मियां बीवी में झगड़ा हो तो पूरा खानदान, हमारा फैमिली सिस्टम इतना वेल इंटीग्रेटेड है कि हर कोई दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। और रहा उस बेचारी का हक जिसके साथ वो हमदर्दी बता रहे हैं, इस्लाम के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें बच्चे की पूरी जिम्मेदारी बाप पे होती है, माँ पे नहीं होती। तो हमको पूरे रूल्स को टोटली मानना होगा, और शोहर को ये समझना होगा कि अगर वो बीवी को छोड़ेगा तो पूरे बच्चे उसको खुद को संभालने होंगे, यानी कि घर का भी काम वो खुद करे और बाहर का भी वो करे।
ठीक है,
और औरत आजाद हो जाती है तो वही
आप औरत की औरत की
शरीयत
जी, आप औरतों की आजादी
नहीं है।
आप औरतों की आजादी के पक्ष में बात कर रही हैं। मैं यहाँ पर एक और श्रोता से पूछ लेता हूँ कि वो क्या कहते हैं। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मैं मोहम्मद वारिस बोल रहा हूँ, सीतामढ़ी जिले से रजवाड़ा मुसरनिया।
मोहम्मद वारिस साहब आप क्या सोचते हैं, बताइए।
जी 3 तलाक जो कहते हैं जो कुरान में है उसी हिसाब से चलना चाहिए।
अच्छा, उसी हिसाब से चलना चाहिए। शबनम जी आप कुछ कहेंगी इनसे?
कुरान में जो तरीका है वो एक वक्त में 3 तलाक नहीं कही जाती, ये पूरा एक 3 महीने का पीरियड होता है। उसके बाद वो तलाक जो है वो वैलिड होती है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि ज़मीन से जो आवाज़ें आ रही हैं जिसको अस्मा जी सुनने को तैयार नहीं है, मुझे लगता है कि वो शायद उन्होंने कभी ज़मीन पर काम नहीं किया। मैं पूर्णिया, अररिया, बिहार के बहुत सारे इलाकों में, कश्मीर में, मेवात में बहुत मुसलमान औरतों के साथ, मुसलमान ख़ानदानों के साथ मैंने काम किया है, और जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि तलाक़ें भी खूब हो रही हैं, रियलिटी ये है कि चाइल्ड मैरिज भी हो रही है, वो जो कहीं और गिनवा रही हैं, मुसलमानों में खूब चाइल्ड मैरिजेस।
मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप दोनों से, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी शबनम जी, ये बताइए कि ये तो हम हिंदुस्तान की चर्चा कर रहे हैं, विदेशों में तीन तलाक की क्या स्थिति है?
ज़्यादातर मुस्लिम जो मुबालिक हैं उसमें तीन तलाक को एबॉलिश कर दिया गया है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, सूडान में, टर्की में, सब जगह तीन तलाक। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो कुछ ख़ास इस्लाम है
जी,
जो
इसका, सिर्फ इसका
जो
जवाब
सिर्फ यही जानती हैं, वो सिर्फ यही जानते हैं
जी। आसमा जी, जब दुनिया के तमाम मुल्कों में जो कि मुसलमान, जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया, तो भारत में इसे आप क्यों ख़त्म होने देता नहीं चाहती? आखिरी टिप्पणी पूछ रहा हूँ मैं।
इस्लाम ने जो तरीका बताया
नहीं, लेकिन बाकी देशों में, बाकी देशों में तो बंद है ना, पाकिस्तान में बंद है,
बाकी देशों की बात है, वहाँ पर बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है उनके पास। लेकिन अगर कोई आदमी एक ही वक्त में तीन तलाक देता है, किसी भी मुल्क में जाके देखे, इस्लाम का लॉ वही है कि वो वैलिड हो जाती है, उसको फोर्स नहीं किया जाता कि दोबारा उसको अपनी पत्नी बना के रखे। तो खवानीन सब जगह समान है, एक जैसे हैं, देना तरीके से है, अगर तरीके से ना दे तब भी।
तो फिर इसका जवाब नहीं मिला ना, ये तो फिर मुस्लिम देशों में क्यों ये मतलब
मुस्लिम
तमाम देशों में
के तमाम ऑर्डिनेंसेस और फैमिली लॉज हमारे पास हैं। ये बात जो कही जा रही है कि इट इज बैन, इट इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है, बल्कि आदमी को वहाँ पर प्री मैरिटल एग्रीमेंट, प्री नप्शियल एग्रीमेंट, ये तमाम चीजें वहाँ होती हैं। हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफ डिवोर्स नहीं है, हमारे यहाँ जितने फैमिली कोर्ट के डाटाज हम कलेक्ट कर रहे हैं, हर जगह हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में तलाक का तनासब बहुत कम है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे पास समय बहुत कम है, समय खत्म हो चुका है। डॉक्टर आसमा जी, शबनम जी, स्टूडियो में आई, आप इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया।